आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के सातवें संकल्प पर गहराई से बात करेंगे
जी।
और ये संकल्प कहता है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव ने इन चार गुणों को सुसंस्कारिता का, आप कह सकते हैं कि चार प्रमुख आधार माना है।
अच्छा,
ये व्यक्तित्व के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि मतलब शरीर के लिए अन्न, जल या वस्त्र।
तो चलिए इन चारों स्तंभों को एक एक करके समझते हैं, इनका असली मतलब क्या है और इन्हें जीवन में उतारा कैसे जा सकता है। तो पहला स्तंभ है समझदारी, और सत्संकल्प में इसे दूरदर्शी विवेकशीलता कहा गया है। ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा अर्थ है कि जो तुरंत मिलने वाला लाभ है ना, उसके लालच में ना फंसना।
अच्छा,
ऐसा क्या होता है कि लोग छोटे और तुरंत मिलने वाले फायदे के लिए ऐसे काम कर बैठते हैं जो उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं।
हाँ, ये तो होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं।
बिल्कुल,
सत्संकल्प में इसके बहुत ही सटीक उदाहरण भी दिए।
जी,
जैसे वो मूर्ख चिड़ियां और मछलियां थोड़े से चारे के लालच में आकर
जी
अपनी जान गंवा देते हैं।
हाँ, या फिर जैसे चटोरे लोग होते हैं,
हाँ,
वो जीभ के स्वाद के लिए अपनी सेहत ही खराब कर लेते हैं।
सही बात है, और विद्यार्थियों के लिए भी ये बात लागू होती है, जो पढ़ाई का समय आवारागर्दी में गंवा देते हैं वो बाद में ठोकरें ही खाते हैं।
नशेबाजी भी शायद एक ऐसी ही नासमझी है।
वो तो एक तरह से धीमी आत्महत्या ही है।
बिल्कुल, इसके उलट आप देखें तो समझदारी उस अनुभवी किसान की तरह है।
कैसे?
वो जानता है कि भविष्य में अगर भरपूर फसल चाहिए तो आज खेत जोतने, बीज बोने और रखवाली करने का कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। वो जानता है कि आज का संयम और परिश्रम ही भविष्य में 100 गुना फल देगा।
यहाँ तक कि अध्यात्म की भाषा में इसे तृतीय नेत्र का खुलना भी कहा गया है।
जी बिल्कुल,
इसका मतलब ये है कि व्यक्ति आने वाली विपत्तियों से बच सकता है
और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण खुद कर सकता है।
अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे गुण, ईमानदारी पर।
जी,
इसकी परिभाषा तो बहुत सरल दी गई है, कथनी और करनी को एक जैसा रखना।
हाँ, और ये सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसी सिद्धांत पर आप देखिए, विश्वसनीयता और आपसी सहयोग का भाव टिकता है।
सही बात है,
जो लोग ईमानदार होते हैं वही बड़े उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभा भी पाते हैं।
सत्संकल्प में एक बहुत सुंदर बात कही गई है
क्या?
कि उनकी गरीबी भी ऐसी शानदार होती है जिस पर अमीरी के भंडार को निछावर किया जा सके।
हाँ,
ये बात मुझे बहुत गहरी लगी।
ये ईमानदारी की असली ताकत को दिखाता है। ये जो ताकत है, ये भौतिक धन दौलत से कहीं बढ़कर है।
इसी से जुड़ा एक बड़ा अच्छा उदाहरण है श्री चिमनलाल शीतलवाड़ का।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में।
उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश की।
उस जमाने में 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम थी।
बहुत बड़ी, पर उन्होंने मना कर दिया। और जब उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देगा,
तो उनका जवाब बड़ा शानदार था।
हाँ, उन्होंने हंसकर कहा, देने वाले तो बहुत होंगे, पर इनकार करने वाला मुझ जैसा ही मिलेगा।
क्या बात है, ये होता है आत्मविश्वास।
और यही ईमानदारी का नतीजा था कि वो आगे चलकर बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति बने।
तो ये कहानी दिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, शायद देर से मिले पर मिलता जरूर है।
तो समझदारी और ईमानदारी के बाद सुसंस्कारिता का तीसरा पक्ष है जिम्मेदारी। सत्संकल्प हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जो है वो अनेकों जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है,
जी,
और ये जिम्मेदारियां कई स्तर पर हैं। पहली तो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी,
मतलब खुद के प्रति।
हाँ, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, ये जो जीवन हमें मिला है इस संपदा का सबसे अच्छा उपयोग करना। फिर आती हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां, जैसे अपने आश्रितों को, बच्चों को स्वावलंबी और सद्गुणी बनाना।
बिल्कुल, लेकिन मनुष्य की सीमा सिर्फ पेट और प्रजनन तक ही तो नहीं है।
मतलब
समाज, धर्म, संस्कृति और पूरी विश्व मानवता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि दूसरे प्राणियों और वनस्पतियों के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सत्संकल्प ये भी स्पष्ट करता है कि इन जिम्मेदारियों को तभी निभाया जा सकता है जब व्यक्ति अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाए।
और सादा जीवन अपनाए। बिल्कुल, देखिए, भौतिक महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। रावण और सिकंदर जैसे लोग भी इन्हें पूरा नहीं कर सके। जो लोग इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं वो जीवन भर असंतोष की आग में ही जलते हैं।
तो जिम्मेदारियां निभाने का रास्ता क्या है फिर?
इसका राजमार्ग निजी जीवन में संतोष और लोकमंगल के कार्यों के प्रति उत्साह से ही बनता है।
और फिर आता है चौथा और अंतिम चरण, बहादुरी।
हाँ,
जीवन में जो उलझने आती हैं उनसे निपटने के लिए साहस तो बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। और ये बहादुरी, ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़नी होती है।
दो मोर्चों पर?
हाँ, पहला मोर्चा है अपने भीतर, अपने ही गुण, कर्म और स्वभाव में जो गहरे बैठे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हैं, उनसे लड़ना।
मतलब अपनी ही कमजोरियों से लड़ना।
बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाला महाभारत है जिसके लिए गीता में अर्जुन को प्रेरित किया गया था।
और दूसरा मोर्चा?
दूसरा मोर्चा है समाज में, समाज में जो अंधविश्वास फैले हैं, कुप्रचलन है, अन्याय है,
उनके विरुद्ध खड़ा होना।
उनके विरुद्ध खड़ा होना, इनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता।
नहीं,
इनके विरुद्ध असहयोग और विरोध की नीति अपनानी पड़ती है। और इसके लिए
अकेले लड़ना तो मुश्किल है।
हाँ, तो इसके लिए सज्जन और अच्छे विचार वाले लोगों को संगठित करना भी बहादुरी का ही एक रूप है।
तो ये चारों गुण, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये मिलकर ही सुसंस्कारिता का निर्माण करते हैं।
एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
तो इन सब का सार क्या है? ये चार गुण सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि एक श्रेष्ठ, सुसंस्कृत और सफल जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं।
प्रैक्टिकल टूल्स हैं।
जी।
जिस तरह सभ्यता को प्रकाशित करने के लिए जागरूकता और पराक्रम की जरूरत होती है, उसी तरह अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाने के लिए इन चार गुणों को अपनाने का भरपूर और निरंतर प्रयत्न अनिवार्य है।
जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगी।
जी।
सत्संकल्प कहता है कि इन चारों गुणों को जीवन का अविच्छिन्न अंग मानना है। अविच्छिन्न अंग मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो सोचिए, अगर हम समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपनी मर्जी या विकल्प न मानकर,
सांस लेने या भोजन करने जैसी एक बुनियादी जरूरत मानकर जिए,
हाँ, तो हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
और व्यक्तिगत सफलता और समाज के प्रति हमारे योगदान को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा? सोचने वाली बात है।